नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, सबसे पहले तो आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों कहें, खेल प्रेमियों कहें या फिर पूरे भारत के लिए काफी खास है। तो आज काफी महत्वपूर्ण खबरें भी हैं हमारे पास खेल को लेकर के। तमाम खेल खबरों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका।
जया, आपको और सुनने वालों को नमस्कार और सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई।
जी, तो तमाम खेल खबरों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप की शुरुआत चीन पर जीत से की और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन भी भारत का दबदबा कायम। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, बधाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित दी उन्होंने। और ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रही है और उनका असली नाम ध्यान सिंह था। सेना में सिपाही से मेजर तक का सफर तय करने वाले ध्यानचंद ने 1926 में जब एक बार हॉकी थामी तो मानो टीम गेम को भी पूरा वतन वन मैन शो के नाम से जानने लगा। तो इनके बारे में कई किस्से हैं।
जी देखिए जय, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता से पहले विदेशों में अगर भारत को कोई जानता था तो दादा ध्यानचंद की वजह से। इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन इनको ध्यानचंद इसलिए कहा गया क्योंकि ये चांद की रोशनी में रात रात भर प्रैक्टिस करते रहते थे। और आज़ादी से पहले 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम पहली बार जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में खेले, उसके ये सदस्य थे, स्वर्ण पदक जीता। 1932 में लाल शाह बुखारी कैप्टन थे, ध्यानचंद उसमें खेले, उसमें यूएसए को अभी तक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 24-1 से हराया था। ध्यानचंद का और उनके भाई रूप सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में यह तीसरा स्वर्ण पदक जीता, वो दादा ध्यानचंद की कप्तानी में था। तो 29 अगस्त 2012 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया गया, वो इसलिए क्योंकि इसका महत्व यह है कि शारीरिक सक्रियता बनी रहे, अनुशासन बना रहे, खेल भावना रहे और एक टीम वर्क के तौर पर लोग काम करें, खिलाड़ी काम करें और सीखें, ये इसका मकसद है।
जी, और अगर हम ध्यानचंद की बात कर ही रहे हैं तो उनके गोल करने की कला की बात कर लेते हैं, जो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। कहा जाता है कि विदेशों में तो उनकी हॉकी स्टिक तक की जांच हुई कि कहीं इनमें चुंबक तो नहीं लगा है। एक प्रसार भारती के आर्काइव्स में उनके इंटरव्यू का एक अंश है, पहले उनसे सुनते हैं।
मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे। बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे।
देखिए बिल्कुल सही बात बताई, उस वक्त इनको कुछ नहीं पता था, बस ये होता था कि विदेशी दौरे पर किसी तरह भेज दें, ऑफिस से आर्मी से छुट्टी मिल जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे लिसनर्स को कि 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में केवल 2 मैच खेलने के लिए भारतीय टीम को 7 महीने लगे थे जाने में और वापस आने में, समुद्री यात्रा करी थी। तो कितना डेडिकेशन था उस वक्त, और दादा ध्यानचंद की जो कला थी, गेंद उनकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी, तोड़कर भी देखा गया इसके अंदर चुंबक तो नहीं। लेकिन और हिटलर ने भी कहा था जब 8-1 से हराया था जर्मनी को 36 के फाइनल में कि आप क्या हैं भारतीय आर्मी में, उसने कहा मैं सिपाही ही हूँ, बोला आप हमारे कंट्री में आ जाओ मैं आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा। इन्होंने धन्यवाद किया, नमस्कार किया, बोला नहीं मुझे अपना देश प्यारा है। तो ऐसे थे दादा ध्यानचंद।
जी, और ध्यानचंद की जयंती पर हॉकी इंडिया ने एथलीट केंद्रित ई सुधारों की भी शुरुआत की है। इन प्रमुख पहलों में खिलाड़ियों के लिए डिजिटल पहचान पत्र जारी करना, पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। ये पहचान पत्र हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हॉकी इंडिया ने डिजी लॉकर को भी पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है, जिसमें हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सभी प्रमाण पत्र खिलाड़ियों को उपलब्ध होंगे। इनमें पिछले 5 वर्षों के प्रमाण पत्रों को भी प्राप्त किया जा सकता है। एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म एथलीट प्रबंधन प्रणाली को खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने, टूर्नामेंट डेटा का प्रबंधन करने और सभी आयु वर्गों में खिलाड़ियों की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए बेरोजगार राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की है। और खेल दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह अतीत से प्रेरणा लेने का दिन है।
राष्ट्रीय स्पोर्ट दिवस स्वर्गस्थ मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने का दिवस है। हमारे देश के स्पोर्ट्स कल्चर को जीने का दिवस है। 1936 जब मेजर ध्यानचंद जी जर्मनी में जब ओलंपिक्स के खेल के मैदान में उतरे थे और उनकी स्टिक और बॉल ने जो कमाल करा था, उस वक्त हिटलर भी ये मैच देखने के लिए आए थे और उसकी स्पोर्ट्स स्पिरिट को देख के उन्होंने भी उसकी प्रशंसा करी। स्पोर्ट्स हमारे लिए केवल मेडल नहीं है, स्पोर्ट्स हमें अनुशासन भी सिखाता है, स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है।
मध्य प्रदेश में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में विभिन्न खेलों के माध्यम से देश प्रदेश का मान बढ़ा रहे खिलाड़ियों की सर्वोच्च सफलता की मंगल कामना की है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 1 घंटा खेल के मैदान में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की आज शुरुआत हुई। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
पूरे प्रदेश में भी हम खेल उत्सव और खेलों की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं। 1 घंटा खेल के लिए इस पंचलाइन के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ है। आज पूरे दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे 313 ब्लॉक्स में और प्रदेश के महानगरों के हर वार्ड में कोई ना कोई खेल एक्टिविटी होगी।
इसी तरह बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि बैतूल जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होगा। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इस बीच गंगटोक से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम पूर्वोत्तर खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
पूर्वोत्तर की बात कहें तो असम समेत पूर्वोत्तर के भी जितने भी प्रदेश हैं, अभी खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो अपने नाम रोशन करने में सक्षम हुए हैं। अगर हम ओलंपिक की बात कहें तो मीराबाई सानू है, असम से दीपांकर भट्टाचार्या था, फिर सिक्किम से आर्चर है तरुणदीप राय और ऐसे करके बहुत सारे खिलाड़ी है। अभी हाल ही में असम में इसे ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी को निकालने के लिए खेल महारण का द्वितीय संस्करण भी किया। इसी साल असम में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जूनियर लेवल का टूर्नामेंट होगा।
और जब बात खेल दिवस की हो रही है तो हम बता देना चाहेंगे कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने कार्यक्रम करंट अफेयर्स में खेल दिवस पर खास जानकारी लेकर आएगा। श्रोता कार्यक्रम को आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर सुन सकते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पहले मोंटो ट्रैक का उद्घाटन किया, जहां 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके साथ ही भारत दुनिया का 25वां देश बन गया है जहां इस तरह का ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक का इस्तेमाल ओलंपिक सहित दुनिया के बड़े एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में होता है। मांडविया ने कहा कि यह सुविधा भारतीय खेल के लिए नए रास्ते खोलेंगी। क्या संकेत है?
बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये अच्छी उत्तम क्वालिटी का ये ट्रैक बना है और इसमें जो पैरालंपिक्स के एथलीट्स हैं उनको कम इंजरी होने की वो रहती है, इंजरी कम होगी नहीं होगी उससे बचाव रहेगा और ये बिल्कुल खिलाड़ी फ्रेंडली ट्रैक बनाया गया है आधुनिकतम तकनीक के साथ।
जी, और जो प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भारत अपनी दावेदारी लगातार लगा रहे हैं ओलंपिक के लिए, तो इससे लेकर के क्या संकेत है?
देखिए, अब सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। भारत 2032 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है बिड करने के लिए, 36 के ओलंपिक की भी तैयारी, तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक जो चीज़ें हैं उनको अभी से लाना शुरू कर दिया तो एक बहुत अच्छी बात है, एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएंगे उस समय तक देश में।
भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में एशिया कप की शुरुआत आज चीन पर जीत से की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के दम पर भारत ने पूल ए के मैच में चीन को 4-3 से हराया। हरमनप्रीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक रिपोर्ट।
उमस भरी गर्मी के बीच राजगीर में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय टीम का आज के मैच में प्रदर्शन आक्रामक और डिफेंसिव दोनों तरह का खेल देखने को मिला। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक के बाद एक 3 गोल किए और चीन के खिलाफ जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया से बातचीत में भारतीय कप्तान ने कहा कि आने वाले मैच में इन गलतियों में सुधार किया जाएगा।
जो मैच रहा है आज का इतना इजी नहीं था
जी,
बट आई थिंक ये पहले हमारा हमने बात भी की है और मैंने बोला भी था कि कोई भी टीम यहाँ पे इजी नहीं है और आई थिंक ये अच्छा लेसन मिला है हमें आज के मेक श्योर के जो आप कोई भी मैच खेलने आओ किसी भी टीम के साथ अच्छे से रेडी होकर आओ।
धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर।
पहला मैच भारत का थोड़ी सी मशक्कत भरी रही लेकिन जीत के साथ शुरुआत हुई, अच्छी बात है।
देखिए जीत तो जीत होती है जय, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम ने हॉकी मैच जीता है और चीन की टीम ने दिल जीता है। जिस तरह से उन्होंने कंपटीशन दिया, क्योंकि जो सारी टीमें उनमें से अगर 5 टीमें देखा जाए, मलेशिया, कोरिया, जापान, भारत और चीन, ये अगले साल हॉलैंड और बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन को नजर में रखकर तैयारी करके आए हैं। और चीन एक ऐसा देश है जो जबरदस्त तैयारी करता। पहला गोल किया चीन ने आज, 7-7 गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए और ये कप्तान हरमन ने माना है, उन्होंने तो पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस किया। तो मैं समझता हूं कि भारत को जो पेनल्टी कॉर्नर की दिक्कत आई, 11 में से केवल 4 को तब्दील कर पाए और चीन का देखिए 50-50, 6 मिले उसको 3 में गोल में तब्दील किया। और भारतीय जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अब आप ये देखिए कि 2017 में जब भारत ढाका में जीता था, मनप्रीत सिंह कप्तान थे, आज 8 साल बाद वो टीम में खेल रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने काफी गलतियां की है, जर्मनप्रीत सिंह को ग्रीन कार्ड मिला, येलो कार्ड मिला, आज थोड़ा सा कैजुअल खेली भारतीय टीम, हल्के में आप किसी टीम को नहीं ले सकते क्योंकि सबको पता है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है। जो कप्तान ने माना है गलतियां उनको सुधारना होगा और मुख्य कोच क्रैग फुल्टन और कोच शिवेंद्र सिंह इसकी तरफ ध्यान देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है
जी। अब बता दें कि भारत अपना अगला मुकाबला रविवार को जापान के खिलाफ दोपहर 3 बजे खेलेगा। कजाकिस्तान के सिमकेंट में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के आखिरी दिन भी भारत ने अपना दबदबा कायम रखा। युवा पिस्टल निशानेबाज राजकंवर सिंधु ने 25 मीटर सेंटर फायर स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि पूर्व विश्व चैंपियन अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में दोनों ने ओलंपियन गुरप्रीत सिंह के लगातार दूसरे दिन अच्छे प्रदर्शन की मदद से भारत को टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिलाया। इस बीच पेरिस में चल रहे BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत की नंबर 1 पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज रात सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए खेलेंगे, जहां उनका मुकाबला मलेशिया के ओरान चिया और सो वुई ई की जोड़ी से होगा।
अच्छा उनको खेल दिखाना होगा। कल उन्होंने नेट के नजदीक काफी गलतियां करी थी सर्विस में और आज का बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, मलेशिया जबरदस्त टीम है
जी। ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में वे लगातार 26वीं बार शीर्ष 2 स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 90 मीटर से अधिक के 2 थ्रो फेंककर खिताब जीता। नीरज चोपड़ा अब 13 सितम्बर के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब बचाने का प्रयास करेंगे,
किताब की रक्षा करेंगे। और इसमें उन्होंने लगातार 3 फाउल किए, इस वजह से वो पीछे रह गए, नहीं तो 90 को पार कर चुके हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 85.01 ही लगा पाए
जी। बिल्कुल। और श्रोताओं अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। कुलविंदर जी आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और राष्ट्रीय खेल दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।